नानी माँ दोनों के बीच में नहीं रुकना चाहती थीं। आंखें खुलते ही नानी माँ कमरे से बाहर निकल गईं। कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था और सीधा रश्मि के साथ हॉल में मदद करने लगी। रौनक ने हल्दी घोलने का काम ले लिया था। हल्दी और मेहंदी की रस्में एक साथ होने वाली थीं, तो वो सारी तैयारियां रौनक करने लगी। जैसे जैसे रौनक छोटे मोटे काम कर रही थी, वैसे वैसे उसकी थकावट बढ़ती जा रही थी और वो सोच रही थी कि शायद उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। लेकिन उसे किसी तरह के प्रेगनेंसी के संकेत अभी तक उसके सामने नहीं आए थे। वहीं आहान पूरी कोशिश कर रहा था कि रौनक को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए वो 5 से 10 मिनट के अंदर कभी जूस कभी नारियल पानी लेकर रौनक के सामने आ जाता और उसे जबरदस्ती पिला देता। कहीं ना कहीं रश्मि को ये देखकर खुशी हो रही थी कि आहान रौनक का कितना ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो भी दिल से चाहती थी कि आहान और रौनक दोनों एक दूसरे को पसंद करें और शायद फिर उनकी भी शादी हो जाए। रश्मि ने पहले ही एंजल और राधिका के लिए बहुत ही खूबसूरत से पीले रंग के लहंगे तैयार कर दिए थे और ब्राइडल के लिए भी अलग से खूबसूरत जोड़े तैयार करवा दिए थे, तो सभी लोग वही पहनने वाले थे। पूरे घर को सजा दिया गया था, सारी तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। दूसरी ओर करीब सुबह के 10 बजे आस्था की आँख खुली और वो कसमसाकर सोकर उठी। जैसे ही उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। पूरी रात अरमान कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहा। अब अरमान को देखकर आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और अपनी आवाज़ को तेज किए बिना ना रह सकी। मुंह फुलाती हुई बोली, आप क्या क्या कर रहे हैं? जैसे ही ऊंची आवाज़ में आस्था ने ये सवाल पूछा, अरमान जो उस वक्त पूरी रात भर सोया नहीं था, सुबह के 5 बजे जाकर उसकी आँख लगी थी, वो तुरंत आँखें खोलकर आस्था को देखने लगा और बेपरवाही से बोला, व्हाट यू मीन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं सोएगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? वैसे भी मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती है, अरमान ये बोला और फिर कुर्सी पर से उठकर अपने हाथों को फैलाकर अंगड़ाइयां लेने लगा, क्योंकि कुर्सी पर एक जगह बैठे रहने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी और वो थोड़ा सा अपने शरीर को हिला डुलाकर एक्सरसाइज करके ठीक करने लगा और बेफिक्री से बोला, लगता है मुझे जिम में ही जाना होगा क्योंकि पूरा शरीर अकड़ गया है। वो आस्था की ओर देखता हुआ सीधा कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक वो हैरान हो गया क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो डार्क एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, ये क्या, दरवाज़ा बाहर से किसने बंद कर दिया? अब अरमान की ये बात सुनकर आस्था भी चौंक गई और आंखों में गुस्सा लाते हुए बोली, क्या दरवाज़ा बाहर से बंद है? ज़रूर आपने ही ये हरकत की होगी, आपने ही अपने किसी आदमी को कहकर दरवाज़ा बंद करवाया होगा। आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है? तो क्यों बार बार आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आस्था सुबह उठते ही अरमान पर शुरू हो गई थी और उसने अरमान को डांटना शुरू कर दिया था, लेकिन अरमान बार बार ये बात बोलता रहा कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं करवाया। लेकिन लगभग 10-15 मिनट बाद तक जब दोनों दरवाजे पर खड़े होकर झगड़ते रहे तो नानी माँ ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और उन लोगों की ओर देखकर नाखुश होकर बोली, अरे मुझे तो लगा था कि तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, लेकिन तुम दोनों बहसबाजी भी इतनी तेजी से कर रहे हो कि पूरे हॉल में तुम दोनों की आवाज़ें गूंज रही हैं। क्योंकि नानी माँ का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था, अब आस्था और अरमान दरवाजे के पास खड़े होकर अब तक जो भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें हॉल के सभी लोग चुपके चुपके सुन रहे थे और सभी खिलखिलाकर मुस्कुरा भी रहे थे और दोनों का झगड़ा बिल्कुल मियाँ बीवी वाला ही हो रहा था। तब नानी माँ ने तुरंत आकर दरवाज़ा खोल दिया था और आवाज़ में सख्ती लाते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि दोनों आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों को एक साथ इस तरह से छोड़ा तो दोनों का झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसीलिए नानी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और आस्था को ये बता दिया कि दरवाज़ा नानी माँ ने ही लॉक किया था। अब आस्था चौंक गई थी और उसने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया था और अपनी आंखें इधर उधर मटकाने लगी। वहीं अरमान अब घूर कर आस्था को देखने लगा था, मानो कहना चाह रहा हो, बोलो बोलो, अब अपनी नानी माँ को बोलकर दिखाओ। तभी एक नौकर ने आकर अरमान को इन्फॉर्म किया कि अविनाश सूर्यवंशी और अबीर सिंह राठौड़ आए हैं। अब अविनाश के आने का सुनकर आस्था खुशी से हॉल में जाने लगी, अपने भाई से मिलना चाहती थी और जैसे ही आस्था वहां पहुंची उसने अपने भाई को गले से लगा लिया था और अबीर को हेलो बोला था। अरमान ने भी अविनाश को थोड़ा सा हेलो बोला और अबीर की तरफ देखकर मुंह बना लिया था, क्योंकि अभी भी अबीर अरमान को कुछ खास पसंद नहीं करता था। जल्दी ही रश्मि वहां आई और अविनाश को देखकर बोली, आप अपने कमरे में जाइए और फटाफट से तैयार हो जाइए, और अबीर जी मुझे लगता है कि आपको ही अविनाश भैया की मदद करनी पड़ेगी और आप उनके साथ रहेंगे ठीक रहेगा। ये बोलकर रश्मि ने अबीर और अविनाश को उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया था। वहीं अविनाश और अबीर आस्था से आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हुए अपने कमरे में चले गए थे। आस्था भी अब हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर राजवीर चिंदल ने अपने जिस आदमी को अरमान सिंघानिया का पैगाम देने के लिए भेजा था कि राजवीर चिंदल अरमान से मिलने के लिए आ रहा है, तो ये बात अरमान तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि ये खबर पहले ही किसी और को नहीं बल्कि आस्था को मिल चुकी थी। और आस्था ने उस आदमी को बता दिया था कि वो मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया है, तो वो आदमी वहां से चला गया था और उसने राजवीर को बता दिया था कि वो अरमान तक मिलने की खबर पहुंचा चुका है, क्योंकि अरमान सिंघानिया और उसकी बीवी एक ही है, तो आस्था अरमान को बता देंगी। लेकिन यहाँ आस्था ने अरमान को कुछ नहीं बताया था, उसे तो बस आज शाम को राजवीर जिंदल के हल्दी में आने का इंतजार था। जल्दी ही सब लोग अब अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे थे। इस बीच रौनक की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने आज काफी ज्यादा भाग दौड़ की थी। इतना ही नहीं, आज शाम के लिए उसने डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी जो वो हल्दी में डांस करने वाली थी। लेकिन अब आहान उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसने रौनक को देखा, रौनक का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। अचानक आहान आगे आया और वो रौनक से बोला, मिस हवा हवाई, चलो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन रौनक, जो उस वक्त किचन में हल्दी की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने में लगी हुई थी, उसने आहान को अनदेखा किया और बात बदलते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ हल्दी और मेहंदी को अच्छी तरह से चेक करना है। कोई कमी तो नहीं रहनी चाहिए, वरना रश्मि दीदी मुझे नहीं छोड़ेगी। रश्मि दीदी ने मुझे सिर्फ एक ही तो काम दिया है, सिर्फ डांस करना, हल्दी को घोलना और मेहंदी की तैयारी करना, तो मैं वो सारे काम अच्छी तरह से करूंगी। अब आहान रौनक की बात सुनकर इरिटेट हो गया। अचानक आगे बढ़कर उसने रौनक को गोद में उठा लिया और अब रौनक छटपटाने लगी और झल्लाते हुए बोली, छछुंदर, पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे यार। उसे लग रहा था, क्योंकि आहान जिस तरह से बात बात पर उसे आजकल किस कर रहा था, तो रौनक को ये हरकत कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो उसे अभी यही लग रहा था कि आहान शायद अकेले में ले जाकर उस पर फिर से किसकी बरसात करेगा। आहान आंखें दिखाकर रोब जमाते हुए बोला, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारा मुंह बंद कराना अच्छी तरह से आता है।
इतना बोलकर आहान उसके होठों की तरफ देखने लगा। तब रौनक ने तुरंत अपने होठों पर अपने हाथों को रख लिया था और अपनी गर्दन ना में इधर उधर हिलाते हुए बोली, सोचा भी मत। आहान अब जल्दी रौनक को अपने कमरे में ले आया और वहां ले जाकर उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर चादर उढ़ाते हुए कड़क आवाज में बोला, खबरदार अगर तुमने यहां से पैर नीचे भी रखा तो, और आज शाम को तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं करोगी, एक ही बार में सुन लेना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवा रहा हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद, जो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद उस फंक्शन में जाओगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शांति से एक तरफ बैठने के लिए, उस फंक्शन में कोई उछल कूद करने के लिए नहीं, समझी तुम? अब तो रौनक आहान की बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और वो क्यों नहीं जाएगी फंक्शन में भला, और क्यों नहीं नाचेगी? वो तो नाचेगी, वैसे भी उसने अपनी बहन को प्रॉमिस किया है, तो भला वो इस तरह से पीछे कैसे रह सकती है? तो इसीलिए अब रौनक मुंह फुलाकर आहान पर चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, समझे तुम? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा बोलने की। अब रौनक की बात सुनकर आहान, जो रौनक को समझाने के बाद बाहर की तरफ जा रहा था, वो रुका और अचानक रौनक के पास वापस आया और एक बार फिर उसके बालों को पकड़कर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे जोरदार किस करते हुए बोला, जस्ट शट अप, जितना कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना करो। ये बोलकर आहान बिना रुके वहां से बाहर चला गया। वहीं रौनक आहान के किस करने पर बुरी तरह से झल्ला उठी थी और गुस्से से उसने अपने बालों को नोच लिया था और दरवाजे की ओर देखकर बुदबुदाई, आखिरकार ये अपने आप को समझता क्या है, दिन ब दिन इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ये बोलकर उसने साइड टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा वॉस नीचे फेंक दिया था और नाराज होकर खुद को ढककर सो गई। जल्दी ही शाम हो चुकी थी। आस्था ने भी आज थोड़ा सा अलग हटकर एक बड़ी ही खूबसूरत सी, बिल्कुल प्लेन हल्के वर्क की पीली साड़ी पहनी थी, जो कि नानी माँ ने उसे पहनाई थी, क्योंकि नानी माँ जानबूझकर आस्था को बड़ी खूबसूरती से तैयार किया था ताकि अरमान आस्था को देखता ही रह जाए और उसके आगे पीछे उसे मनाने के लिए घूमने लगे, क्योंकि नानी माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका दामाद कितना ज्यादा खुरूस और एरोगेंट था, तो इतनी आसानी से तो वो आस्था से माफ़ी नहीं मांगने वाला था और ना ही उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने वाला था, तो इसीलिए जानबूझकर नानी माँ आस्था की खूबसूरती के द्वारा अरमान को उसके पीछे भेजना चाहती थी।